समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और डेडलाइन में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Manoj, Adab and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama. Aur bhai, hafte ka teesra din hai, to ekdam se, you can say we are just in the middle of the week, so some people are probably already under the burden of office work and everything, so थोड़ी सी राहत लाता है आपका जैसे दिन क्लोज होता है। ये न्यूज मैगजीन जिसका नाम है परिक्रमा, इन विच वी ब्रिंग यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स आवर सेगमेंट डेडलाइन इंडिया, इन विच वी टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एंड द लास्ट सेक्शन टू विच यू ऑल लुक फॉरवर्ड टू इज इन विच वी रिमेम्बर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज। और क्योंकि नाम है शो का परिक्रमा, तो जाहिर सी बात है देश की परिक्रमा के बगैर कैसे ये शो मुकम्मल हो सकता है। ये सब कुछ होगा रफली इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। But first, let's start with the headlines. Prime Minister Narendra Modi says Beti Bachao, Beti Padhao movement helped in overcoming gender biases and paved way for girls' education and empowerment.
दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से प्रचार अभियान में तेजी।
National Khadi Exhibition at the Mahakumbh showcasing country's rich heritage attracting thousands of visitors.
तुर्की में आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 76 हुई।
And in cricket, the first T20 international of 5-match series between India and England to be played at Eden Gardens in Kolkata today. And well, we all know that the important topic today in Dateline India is that the Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan has completed 10 years. And we all know, Manoj, that betiyan hi keh sakte hain ghar ko roshan karti hain. They are the lifelines of a family and the essence of the society. And a daughter is not just a child. She is also a source of strength, inspiration and joy, contributing significantly to both family and community. Understanding the importance of daughters is essential for building a balanced and a progressive world. And sabse mahatvapurna hai wo din gaye jab hum log kehte the betiyon ki parvarish sirf us tarah karo ki unka maqsad hai sirf dusre ghar jana. Of course, us nazariye se bhi karna chahiye, since they should know about interpersonal relationships. But nonetheless, we should also make them educated so that they can be independent. And I remember, Manoj, because we are just two sisters in our family, तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि चाहे 2,000 रुपए कमाना लेकिन अपने जरूर कमाना, नॉट बिकॉज दैट इट विल गिव यू सेंस ऑफ वट एवर यू नो, इट विल गिव यू सम फाइनेंशियल फ्रीडम एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, अ सेंस ऑफ वर्थ, यू कैन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन दो द हस्बैंड माइट बी अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल टू बी इंडिपेंडेंट एज वेल।
जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यान्वयन के एक दशक पूरे कर रही है। भारत सरकार की इस प्रमुख पहल का उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात को दूर करना और लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये योजना भारत सरकार की सबसे प्रभावशाली सामाजिक उपक्रमों में से एक बन गई है। ये योजना अब 2021-2022 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम मिशन शक्ति के साथ एकीकृत है।
That's absolutely right. So, Beti Bachao, Beti Padhao is more than just a mere slogan. It is indeed a transformative campaign that was initiated by the Government of India in January 2015. And Manoj has already told you what are the, you can say, the aims of this, you can say, movement or this Abhiyan. And the program definitely symbolizes hope and change, urging communities to nurture and empower their daughters. And on completion of a decade of Beti Bachao, Beti Padhao, Prime Minister Modi said that the movement has become a transformative, people-powered initiative and has drawn participation from people across all walks of life. In a social media post, Mr. Prime Minister said that it has been instrumental in overcoming gender biases and created the right environment to ensure that the girl child has access to education and opportunities to achieve her dreams. However, Manoj, if I may put a point across to all our listeners, Beti Bachao, Beti Padhao, tab tak jo hai puri tarah se you can say mukammal nahi ho sakta, sampurn nahi ho sakta jab tak hum apne beton ko bhi ek you can say unki parvarish us tarah nahi karte jis jo auraton ki izzat kare, auraton se kis tarah baat karni hai,
wo bahut zaruri hai.
Yes, absolutely. So it's a two-pronged approach, kyunki hum log unko opportunities kaun hote hain dene wale, they should create opportunities for themselves, but that will only happen if we give them the right education. And that probably applies not the education that we receive from colleges and books only, but a mentality, a perspective towards life.
जी हाँ, सायरा, इस योजना के तीन मुख्य उद्देश्य है. पहला उद्देश्य लिंग पक्षपाती लिंग चयन को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का सख्त कार्यान्वयन करना है. दूसरा उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है. और तीसरा उद्देश्य है बालिकाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में उनके नामांकन और ठहराव को प्रोत्साहित करना और उनके लिए उच्च शिक्षा को समर्थन देना शामिल है.
Yes, absolutely. I think that's a very, very practical approach to probably, you can say, to give the girl child its due. And मेरे ख्याल से कि हर साल हम लोग का जो हम लोग की संस्कृति इतनी खूबसूरत है, आप देखिए कन्या पूजा का क्या महत्व है. यही महत्व है कि कन्याओं का एक अपना एक रोल है सोसाइटी में, बट उस दिन को हम लोगों ने सिर्फ महदूद कर दिया है पूरी और चने बना के कन्या को भोज कराने में. बट दैट इज, यस, दैट इज नॉट द ओनली एम, बट डेफिनेटली giving the respect that a girl deserves. I think that is what our culture has taught us through the scriptures as well. Mm-hmm. And the key strategies and initiatives, if you talk about this movement, the program adopts a multifaceted approach combining legal, educational and also social interventions. There are of course awareness campaigns, the mass campaigns, you know, through which through social media and through traditional media, community programs to challenge stereotypes and promote the value of girls. Bahut sare nukkad natak bhi log karte hain, pesh karte hain. And we all know that the education programs, of course, that there should be bahut hi ahem cheez hai ye, aur kyunki mera bahut arse tak vaasta raha hai sarkari स्कूलों साथ काम करने में, तो यू नो हाइजीनिक टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, सेपरेट हाइजीनिक टॉयलेट फॉर गर्ल्स इज अ वेरी वेरी मेजर फैक्टर दैट इज डेफिनेटली देयर टू रिटेन यू कैन से गर्ल्स इन स्कूल्स एंड प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफ कोर्स एंड कैंपेन्स टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट्स. और अगर समाज की बात करें तो ये तो एक लामहदूद एक कह सकते हैं टॉपिक है. वी हैव टू एंगेज लोकल लीडर्स, ऑल्सो सम एनजीओज and above all citizens to drive the grassroots change. yani hum aur aapki mansikta zarur change hona chahiye taki hum log samaj mein badlav eventually dekh paaye.
ji ha, iska nishkarsh ye hai ki beti bachao beti padhao yojana ne bharat mein balikaon ke jeevan ko behtar banane mein mahatvapurn pragati ki hai. इसने जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार करने, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सहयोग करने में मदद दी है. सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ काम करके इस योजना ने प्रत्येक बालिका को महत्व देने और उसकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। जैसे जैसे ये योजना अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर रही है, समावेशी नीतियों, बेहतर कार्यान्वयन और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से दीर्घकालिक परिवर्तन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित होगी। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
तो इस सफर में सबसे पहले हम लोग कटक चल रहे हैं। इनफैक्ट वी ऑल नो कि जो डेडलाइन का मौजूद था वही फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑन द कंप्लीशन ऑफ डेकेड और 10 इयर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। वेल द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस मूवमेंट एंड द लैंडमार्क इनिशिएटिव इज एम्ड एट एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। The celebrations in Odisha include a series of programs organized at the state and district levels and starting from today, Manoj, they will culminate on International Women's Day that is on 8th of March.
जी हाँ सायरा, ये बहुत ही अर्थपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये खत्म हो रहा है।
So we have a report from our correspondent. Let's hear more.
Odisha has emerged as a leader in implementing the Beti Bachao Beti Padhao scheme, launching extensive statewide efforts to foster an environment conducive to girls' education and empowerment. The state government has adopted a multidimensional strategy, engaging local communities, schools, and non-governmental organizations to drive progress. The initiative has played a crucial role in improving the child-sex ratio and promoting education for girls, particularly in rural and underserved communities. In Odisha. To mark the milestone, Odisha hosts awareness campaigns, rallies, and workshops centered on key themes such as girls' education, health, and nutrition. These events aim to reaffirm the state's commitment to promoting gender equality and creating a culture of inclusivity.
Navarampur jile se main Kishori Patnaik, legal advisor, Sakhi One Stop Center se bol rahi hu. Hamara kaam hai ki wo jo balika, wo bacche jo log hote hain, wo jo elopement bhi hota hai aur padhai mein jo garibi aadmi होते हैं उन बच्चों को लेकर हम वो बालिकाओं को लेकर हम लोग डीसीपीओ के पास जाकर उनके शिक्षा के बारे में वो कैसे हायर स्टडी जाएंगे उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जितने भी हेल्प चाहिए उन लोगों को हम लोग पहुंचाते हैं। 764 चाइल्ड मैरिज हम लोग बन के हैं और उसके साथ हमारा दो नवरंगपुर जिले का दो ITI स्टूडेंट है वो चाइल्ड मैरिज को बंद करके वो अभी शिक्षा है हमारा उमरकोट ITI कॉलेज में।
एस इंडिया सेलिब्रेट्स ए डेकेड ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme, it underscores the country's commitment to empower girls and women and pave the way for a brighter and more equitable future for all. For Parikrama, this is Sitish Singh Rathor, Akashwani Samachar, Katak.
प्रयागराज में चल रहा अध्यात्म का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बड़ा अवसर माना जा रहा है। इस आयोजन में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने का अनुमान है जो यहां तमाम गतिविधियों में शामिल होंगे। सरकार को उम्मीद है कि महाकुंभ अर्थव्यवस्था में 2,00,000 करोड़ का योगदान देगा।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में रोजाना श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ये आयोजन जहां पूरे विश्व में एकता का संदेश दे रहा है, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और विकास से परिचित करवा रहा है, वहीं इतने बड़े आयोजन से अर्थव्यवस्था में भी बड़े योगदान का अनुमान जताया जा रहा है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग शरीक होंगे जो यहां रहने रुकने खाने पीने घूमने सहित तमाम ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे जिससे अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि एक श्रद्धालु कम से कम 6 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है।
मैं समझता हूँ कि कोई भी पर्यटक जब किसी भी डेस्टिनेशन पर जाता है तो जहाँ से वो चलना शुरू होता है, ट्रेन से आएगा, जहाज से आएगा, वहाँ से अपना खर्चा करना शुरू करता है। हमारा पर्यटक एक श्रद्धालु कम से कम 6 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। हमारा अनुमान है कि इस महाकुंभ के आयोजन से 45 दिन का आयोजन है लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है।
महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं का व्यापार 17,310 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज में प्रोफेसर रहे पीयूष रंजन अग्रवाल का मानना है कि इस महाकुंभ से 1,40,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा प्रयागराज को होगा।
एक बार आप उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो जो भी कंज्यूम करते हैं, पेट्रोल हो, फूड है, हैबिट्स है, हैबिटेट्स है, वो सारी चीजें आकर के परकुलेट डाउन करती टू द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कुंभ मेला।
देश और प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार को उम्मीद है कि जो निवेश हुए हैं उनका प्रदेश के धार्मिक पर्यटन के साथ ही प्रयागराज के विकास पर दीर्घकालिक असर होगा, जो अलग अलग वर्गों को बड़ा लाभ देगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेन शर्मा।
सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक रक्त रोग है जो प्रभावित रोगी के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ये भारत की जनजातीय आबादी में अधिक आम है, लेकिन गैर आदिवासियों में भी होता है। ये न केवल एनीमिया का कारण बनता है, बल्कि दर्द, विकास में कमी और फेफड़े, हृदय, गुर्दे, आंखों, हड्डियां और मस्तिष्क जैसे कई अंगों को भी प्रभावित करता है। सरकार ने इस रोग के उपचार के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। इस दिशा में मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा।
मध्य प्रदेश में अब तक कुल 90,98,902 लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग कर 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इसके साथ ही 53,87,892 सिकल सेल कार्ड भी वितरित किए गए हैं। यह कुल वितरण का 59.21% है। इस तरह मध्य प्रदेश ने इन दोनों ही मामलों में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिकल सेल स्क्रीनिंग में 100% उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल उन्मूलन का संकल्प मध्य प्रदेश की धरती से लिया है। प्रदेश सरकार भी 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों के लिए आगे आएं। सिकल सेल की जागरूकता में सहयोग कर प्रदेश को स्वस्थ और सशक्त बनाने में सक्रिय सहभागिता करें। गौरतलब है कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में काफी अरसे से सक्रिय हैं। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सिकल सेल मुक्त भारत अभियान में देश का अग्रणी राज्य बनने पर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। स्वास्थ्य और उपचार के क्षेत्र में रोग की समय पर पहचान और रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2024-25 में 90,00,000 से अधिक स्क्रीनिंग के साथ रक्त रोग सिकल सेल की स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश ने अग्रणी राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। परिक्रमा के लिए भोपाल से संजीव शर्मा।
And now it's time for Azadi Ka Safar.
We remember revolutionary freedom fighter Roshan Singh, who was born on the 22nd of January 1892 in Shah Jahanpur district of Uttar Pradesh.
Roshan Singh was associated with Arya Samaj and was a sharpshooter and a good wrestler. When the British imposed a ban on Indian National Congress Volunteer Corps in November 1921, Roshan Singh led the troop of volunteers from Shahjahanpur district to the Bareilly region.
Roshan Singh was arrested along with other protesters and sent for 2 years rigorous imprisonment in the central jail of Bareilly. After release from the jail, Roshan met Ram Prasad Bismil and joined the Hindustan Republican Association, HRA, where he was allotted the task of teaching shooting to the youngsters in the association.
In Bamroli, HRA used armed action to take money from the richer sections to fund the revolutionary activities. On 25th December 1924, HRA attacked the house of moneylender Baldev Prasad and Roshan Singh played a prominent role in the operation. Later, Roshan Singh was arrested along with other HRA members in Kakuri case. Roshan Singh wrote to his cousin Hukum Singh from the Naini jail of Allahabad.
The life of a man is the best creation of God, and I have proved this by sacrificing it for the cause of its creation. I am the first man of my native village Nabada who has glorified all of you, my brothers and sisters. Why to repent for this mortal human body? It was to be finished any day. I am happy that I could devote more and more time to meditate in the last moments. The man who dies in the way of his duty or dharma gets salvation forever. You need not worry for my death. I'm going to sleep peacefully in the lap of God.
Roshan Singh, Ram Prasad Bismil, Rajendranath Lahiri and Ashfaq Ullah Khan were martyred on 19th December 1927. We salute the great freedom fighters.
We also remember freedom fighter and writer Tarun Ram Phukan, who was born on the 22nd of January 1877 in Guwahati, Assam. He is respectfully referred to as Deshabhakta in Assam for his immense love for the country.
When the freedom movement gained momentum during the non-cooperation movement under the leadership of Mahatma Gandhi, he gave up his flourishing practice and jumped aboard the freedom movement.
He played an important role in establishing the Indian National Congress in Assam. In 1921, Mahatma Gandhi visited Assam and stayed at his residence in Guwahati's Baralumukh. Phukan was Gandhiji's trusted companion. They also performed the Bidesi Bostro Daha Jagya, the burning of foreign goods, together. After the British declared Congress an illegal party, Phukan was arrested and remained in jail till November 1922.
In 1927, Phukan was elected as the president of Assam Sahitya Sabha at its Golpara session for his contribution to Assamese literature. Phukan was also involved in many social works, including spreading education upliftment of the underprivileged sections of society. He also fought for the removal of untouchability and advocated equality of the genders.
He used to urge women to play an active role in national affairs. He also popularized the use of khadi and other Swadeshi goods in Assam. Tarun Ram Phukan continued to work for the national cause till his death on the 28th of July 1939. We salute the great nationalist.
Well, time now for business news. Today, benchmark domestic equity indices rebounded and ended with gains of over 0.5%, led by the information and technology sector. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex surged 567 points to close at 76,405, and the National Stock Exchange rose 131 points to settle at 23,155. And agar khel ki khabron ki baat ki jaye, well, in cricket, the first of the five match T20 series between India and England will be played at the Eden Gardens in Kolkata this evening. The match will start at 7 p.m. and the other matches of the series will be held in Chennai, Rajkot, Pune and Mumbai. The final match will take place in Mumbai on 2nd of February.
और बैडमिंटन से जुड़ी खबर, जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स मुकाबले में पीवी सिंधु का सामना वियतनाम की टीएल गुएन से हो रहा है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना जापान के ताकुमा ओबायाशी से होगा। किरण जॉर्ज कोरिया के जियोन ह्योक जिन से 21-12, 21-10 से हार गए। और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम याद कर रहे हैं कॉमोडोर बबरू भान यादव को, इनकी आज पुण्यतिथि है। भारतीय नौसेना में वे सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। 1971 की जंग में असीम शौर्य दिखाने के कारण उन्हें महावीर चक्र से विभूषित किया गया था। 4 दिसंबर 1971 की रात को भारत पाक युद्ध के दौरान रूस द्वारा निर्मित मिसाइल बोट की कमान संभालते हुए बबरू भान यादव ने कराची बंदरगाह के नजदीक पाकिस्तान के 3 युद्ध पोतों को बर्बाद कर डुबो दिया था। बहादुरी एवं कर्तव्य परायणता के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से उन्हें नवाजा गया, जो भारतीय नौसेना के लिए पहला पदक था। गुरुग्राम बस स्टैंड से दिल्ली बॉर्डर डुंडाहेड़ा तक के रोड का नामकरण रेवाड़ी के जांबाज महावीर चक्र विजेता कॉमोडोर बबरू भान यादव के नाम पर किया गया है। और आज जन्म दिवस है तरुण राम फुकन का। वे असम के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1877 ईस्वी को गुवाहाटी में हुआ था। इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन बैरिस्ट्री से प्रारंभ किया था। स्वराज्य पार्टी के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा हाथ था। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए तरुण राय ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वे महिलाओं की समानता के सदा पक्षधर रहे। 24 जुलाई 1940 में इनका निधन हुआ। और आज पुण्यतिथि है पार्श्व गायक नरेंद्र चंचल की। वे भारत के प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। मुख्य रूप से उन्हें माता के भजन गायक के रूप में जाना जाता था। नरेंद्र चंचल ने बहुत से भजन और हिंदी फिल्म के गीत गाए थे। उनके गीत के बिना हर दुर्गा पूजा अधूरी होती थी। पूरे उत्तर भारत में उनका बड़ा नाम था। नरेंद्र चंचल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर शोमैन राज कपूर की फिल्मों के लिए भी गाने गाए। फिल्म बेनाम में गाया गाना मैं बेनाम हो गया आज भी लोग खूब पसंद करते हैं।
And now we are going to remember a very fine director, producer, screenwriter, editor and actor of yesteryears. Yes, we are remembering Vijay Anand on his birth anniversary today, who is acclaimed for films such as Guide, The Sri Manzil, Jewel Thief and Johnny Mera Naam. He made most of his films for in-house banner Navkirtan Films and was part of the prestigious Anand family. And let's hear one song from one of his films. And Manoj, even though Vijay Anand had illustrious career as an actor, but he was primarily remembered as a director. And he made his directorial debut in the year 1957 with the super hit Nau Do Gyara, the film where Vijay's brother Dev Anand played the leading role. And in those days, imagine, the film was shot in only 40 days.
Ji haan, inki sari filme jo bhi hai, Guide wagaira, तीसरी मंजिल बहुत ही यादगार फिल्में हैं। ये बहुत ही फिल्मों के प्रति समर्पित अभिनेता थे।
That's true. And though most of his films were produced by Navkirtan Films, the production company that was started by the Anand brothers themselves, but the exception was Teesri Manzil, which was produced by Nasir Hussain. Ram Balram produced by Donny Janeja and Rajput produced by Mushir Riaz.
मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का।
And Vijay Anand was known for his stylish song picturizations such as Numbers, O Haseena Zulfo Wali. We also have a medley. Let's listen to that.
और अब बात करते हैं ए नागेश्वर राव की। इनकी आज पुण्यतिथि है। वे भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। इन्हें कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2011 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और 1990 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मुख्य फिल्में हैं सीताराम जन्मम, रत्नमाला, मुगुरु मारातीलू आदि।
ఆగదు ఏ నిమిషము నీ కోసము, ఆగితే సాగదు ఈ లోకము, ఆగదు ఏ నిమిషము.
We're also remembering Namrata Shukla on her birthday today. And we all know as a very fine actress, though she had a very brief career, but this beautiful song is picturized on her.
और और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मनोज और सायरा मुस्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर।
नमस्कार
नमस्कार।